अरमान जी ने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जैसा आप चाहते थे। उन्होंने हमें पत्नी के रूप में तो स्वीकार किया, लेकिन सिर्फ समाज और अपने दादाजी के डर से। असल में वे अब भी हमसे नफरत करते हैं और प्यार नहीं करते, बस यही दिखावा करते रहे। और जिस वक्त सम्राट ने हमें बालकनी में अरमान जी के साथ देखा, इसका अंदाज़ा हम दोनों को था, लेकिन फिर भी हमने नासमझी का नाटक किया ताकि उसे किसी भी तरह हम पर शक ना हो। और हाँ राजवीर जिंदल, जिस वक्त क्लब में हम सम्राट से मिलने गए थे, उस वक्त भी अरमान जी को पता था। उन्हीं के कहने पर हम सम्राट से मिलने क्लब में गए, और तुमने वहां अरमान जी को बुलाया ताकि सम्राट को और मुझे साथ में देखकर उन्हें गलतफहमी हो। तुझे लगा हमें सम्राट के साथ देखकर हरमान जी का पागलपन बढ़ जाएगा और वो गुस्से में आकर हमारी जान ले लेंगे। हम सब समझ चुके थे कि तुम लोग कोई अलग ही तरह का खेल खेल रहे हो। और फिर उसके बाद हम प्रियंका दीदी को छुड़ाकर घर लेकर आए, और जैसे ही मामा जी ने प्रियंका को देखा, उनका रिएक्शन देखकर हमें थोड़ा अजीब लगा। जिस तरह से मामा जी ने कहा कि वो हमें नहीं छोड़ेंगे, ये बात भी हमें अजीब लगी, इसीलिए हमने सबसे पहले प्रियंका के चेहरे के पीछे का सच जानने का फैसला किया। आखिरकार तुम उसे अपने पास किसी सामान की तरह क्यों रख रहे थे, ये बात हमें समझ में आने लगी थी। तभी हमने उसके माता पिता के बारे में भी कुछ बातें पता चली। अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के लोग आज भी उनसे नफरत करते हैं, उस नैना माथुर से जिसने उनके लिए अनाथ आश्रम बनवाया, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा, फिर भी लोग उनसे नफरत करने लगे थे, ये बात हमें बहुत अजीब लगी। और ये भी पता चला कि नैना माथुर को लेकर जब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तब बहुत कुछ सामने आया, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हमारे पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था और ना ही हमें ये पता था कि असली सच क्या है, इसीलिए हमने अपने ही घर में एक प्लान रचा। हम ये अच्छी तरह से जान चुके थे कि प्रियंका को छुड़ाने के बाद आप लोग शांत नहीं बैठेंगे और कोई ना कोई घटिया चाल जरूर चलेंगे। और हमें तो उस वक्त ही समझ में आ गया था जब सम्राट ने अस्पताल में हमारे लिए खाना भेजा था। हम समझ चुके थे कि उस खाने में कुछ मिलाकर हमें अगवा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी जब वो सफाईकर्मी हमें बार बार घूरकर देख रहा था और सम्राट को खबर दे रहा था, तब हमें यकीन हो गया कि तुम्हारा अगला टारगेट मुझे अगवा करना ही है। लेकिन तुम लोगों को क्या लगा कि तुमने मुझे अगवा किया? नहीं, मैं जानबूझकर अगवा हुई थी ताकि नैना माथुर का पूरा सच तुम्हारे मुंह से सुन सकूं, क्योंकि एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के नाम कर दी, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था। कम से कम हम उसकी सच्ची और अच्छी छवि लोगों के सामने लाना चाहते थे ताकि सबको ये पता चल सके कि नैना माथुर ने कभी कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि उनके साथ ही अन्याय हुआ था, एक ऐसा अन्याय जो हर चीज़ से परे था। हम जानते हैं कि अगर हम अपने बारे में लोगों को बताते तो शायद कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता, और तुम्हारी सबसे बड़ी हार यही है कि तुम्हारे उसी जुनून को हमने तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया और तुम्हारे ही मुंह से नैना माथुर का पूरा सच दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और आप जानते हैं, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दोबारा से जुड़े पुलिस ऑफिसर्स ने भी ये सब रिकॉर्ड किया है। इतना ही नहीं, देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे मुंह से निकला ये सारा सच सुनेंगे। अब तो सभी लोग हैरानी से ये सब सुनने लगे थे और उन्हें समझ आ गया था कि आखिर अरमान आस्था ने ये मौत का झूठा नाटक क्यों रचा। फिलहाल अब जैसे ही राजवीर ने ये सब सुना, उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। वो तुरंत ही चिल्लाते हुए बोला, बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नैना माथुर ने मुझ पर हाथ उठाया था, उसके भाइयों ने मुझे कुत्ते की तरह मारा था, हमेशा से उसका नाम बदनाम होकर ही रहेगा, उसके नाम पर लगा कलंक कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी नहीं। यही राजवीर जिंदल का बदला है, मरने के बाद भी लोग उसे कलंकित ही समझेंगे, उसके परिवार को अपराधी समझेंगे, और जब तक ये सब नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये कहते कहते राजवीर पूरी तरह से पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। हालांकि दर्द की वजह से उसकी जुबान से आवाज़ काफ़ी कम निकल रही थी, लेकिन फिर भी अपने पागलपन से वो बाज नहीं आया। तभी आस्था हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम तुम जैसे साइको इंसान को गोली मार दें या गर्दन काट दें तो तुम एक झटके में मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी जान लेने से पहले तुम्हारे अंदर का घमंड तोड़ना जरूरी था। तुम्हारा ये वहशी जुनून कि तुम किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, तुम्हें ये समझाना जरूरी था कि तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने लाखों जिंदगियां बर्बाद की, तुमने नैना माथुर जैसी बेगुनाह औरत की जिंदगी तबाह कर दी, इसीलिए हमने ये पूरा षड्यंत्र रचा ताकि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आए। और आज नैना माथुर की छवि पूरी तरह से साफ हो चुकी है, उनके चरित्र पर लगा हर एक कलंक मिट चुका है। ये सुनते ही राजवीर अपने एक हाथ से अपना सिर पकड़कर पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने मेरी बेइज्जती की थी, उसने मेरी बेइज्जती की थी। राजवीर अब पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था, लेकिन आस्था की मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। तभी सम्राट आस्था को घूरते हुए बोला, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो मर गई थी और तुम्हें हमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा? तुम्हें ये खौफ नहीं हुआ कि हम तुम्हारी जान भी ले सकते थे? आस्था ने ठंडी लेकिन खतरनाक मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम जानते हो जिस दिन तुमने मेरे बारे में घटिया ख्याल अपने दिमाग में लाया था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगी, और हमने जो किया वो सिर्फ हमारे प्लान का हिस्सा था। तुम लोगों को क्या लगा कि अरमान का पागलपन फिर से लौट आया है? नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अरमान जी पहले ही बदल चुके थे, वो हमारे पति हैं और हमसे सिर्फ प्यार करते हैं।
इतना कहकर आस्था ने सम्राट के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और अरमान के हाथ से पकड़ा हुआ स्क्रू ड्राइवर उठाकर उसके हाथ पर बार बार वार करने लगी और गुस्से से बोलने लगा, इसी हाथ से छूना चाहते थे ना तुम हमें, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। सम्राट दर्द से चीखने लगा, लेकिन आस्था के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। हमारे पति के होते हुए तुम हमें छूने की सोच भी कैसे सकते हो, बहुत शौक है ना खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने का। सुन लो, तुम एक गली के कुत्ते से भी गए गुजरे हो, तुम कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते, तुम सिर्फ एक पागल इंसान हो। ये सुनकर सम्राट अपने कान बंद करते हुए चिल्लाया, नहीं, मुझे नफरत है अरमान से, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अजय हूँ। आस्था हंसते हुए बोली, वो अजय जिसके नाक के नीचे से मैं सब कुछ छीन कर ले गई, तुम्हारी तो मेरे सामने बोलने की औकात भी नहीं है। वहीं अविनाश एंजल प्राउड नजरों से आस्था को देख रहे थे, सभी की आंखों में अब एक अलग हौसला और हिम्मत थी। फिलहाल अब सम्राट और राजवीर दोनों ही पूरी तरह से टूट चुके थे, कुछ ही पलों में दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। दादाजी आगे बढ़े और राजवीर को देखते हुए बोले, इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे, पहले भी इसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था, लेकिन ये पापी फिर लौट आया, ऐसे राक्षसों को जीने का कोई हक नहीं है, इसे हमें अपने हाथों से खत्म करना होगा। अभिमान जी ने बंदूक उठाते हुए कहा, मैं अभी इसे गोली मार देता हूँ, जब तक ये मर नहीं जाता मैं यहीं खड़ा रहूंगा। लेकिन तभी आस्था ने तुरंत रोकते हुए कहा, नहीं पिताजी, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी मौत तय है, लेकिन इसकी सजा हम नहीं देंगे। उसकी आंखों में एक ठंडी आग जल रही थी, इसे सजा देंगे और लोग। आस्था की रहस्यमय भाषा सुनकर सब आश्चर्य से भर गए और समझ नहीं पाए कि आखिर कौन देगा राजवीर सम्राट को सजा। फिलहाल आस्था का दबंग अंदाज देखकर अभिमान की आंखों में गर्व साफ छलकने लगा और वो प्राउड नजरों से आस्था को देखने लगे।
तभी अविनाश आगे आया, उसने बिना कुछ सोचे आस्था को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर गले लगाते हुए फूट फूट कर रो पड़ा और सुबकते हुए बोला, सिचुएशन कुछ भी हो, आगे से कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा नाटक मत करना, मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अविनाश के गले लगते ही आस्था की आंखों में भी आंसू आ गए। वो धीमे स्वर में बोली, हम बिल्कुल ठीक हैं भैया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम आपसे थोड़ा सा नाराज हैं, आपको हमारे पति से इतने कड़े शब्द बोलने की क्या जरूरत थी। ये सुनते ही अविनाश थोड़ा संभलते हुए बोला, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा था, अगर वाकई अरमान तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर बैठता तो मैं उसकी जान ले लेता। ये सुनकर आस्था तड़प गई और सीधा अरमान के गले से लग गई और बोली, अगर अरमान जी को कुछ हो जाता तो हम भी अपनी जान दे देते भैया। ये कहते हुए उसने फिर से अरमान को और कसकर सीने से लगा लिया, जैसे उसे छोड़ने से डर रही हो। आस्था के खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार देखकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। तभी अचानक आहान हंसते हुए बोला, अरे वाह भाभी, ऐसी नाजुक और तनाव भरी घड़ी में भी आपको रोमांस ही याद आ रहा है, हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि भैया आपको इतनी कसकर क्यों थामे हुए हैं, लेकिन अब समझ आया, मामला तो पहले से ही दिलों के जुड़ने का है। उसकी ये चुटीली बात सुनते ही माहौल में हल्की सी मुस्कान और धीमी हंसी की लहर दौड़ गई। तभी आस्था की नज़रें सभी लड़कियों पर गईं, जो होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी लिए खड़ी थीं। आस्था उनके पास गई और उसे गले लगाकर बोली, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग प्लीज़ रोना बंद करें, आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, खबरदार जो फिर कभी रोए। इतना सुनते ही रौनक, वंशिका और राधिका भी आस्था से लिपटकर रोने लगी, तुमने तो आज हमारी जान ही निकाल दी थी। नानी माँ अब तक खामोश खड़ी थी, उनके चेहरे पर अविश्वास साफ नजर आ रहा था, जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हों कि जो कुछ हुआ वो सच है। आस्था ने जैसे ही नानी माँ को देखा वो तुरंत उनके पास चली गई। नानी माँ, क्या हुआ आपको, आप इस तरह चुप क्यों खड़ी हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, देखिए। ये कहते हुए उसने उनका हाथ पकड़कर अपने गाल से लगा लिया। नानी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं गोरी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम भी जिंदा नहीं रहते। ये कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसी वक्त वंशिका और रौनक ने सजना को कसकर पकड़ रखा था। सजना चुपचाप सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे और गुस्से का मिलाजुला भाव था। उसे अपनी ही बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अरमान ये सब नाटक कर रहा था और वो समय रहते निकल भी नहीं पाई। अचानक सजना नानी माँ की ओर देखकर गुस्से में बोली, ये बुढ़िया, ये फालतू का ड्रामा बंद कर, तेरी आस्था को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, अब या तो मेरी जान ले ले या मुझे इसकी जान लेने दे। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। इसने बचपन से लेकर आज तक मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं गांव के जमींदार की बेटी थी लेकिन इज्जत हमेशा इसे मिली, लोग मुझसे डरते थे पर इसकी इज्जत करते थे, ये बात मैं कैसे बर्दाश्त करती, और जिस इंसान से मैंने प्यार किया वो भी इसका ही निकला, सोच सकते हो तुम मुझे कैसा लगा होगा। सजना अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में जहर भरा हुआ था। मुझे लगा था कि सम्राट इसे अगवा करके इसकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा, लेकिन ये तो बच गई, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। अब वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मुझे इससे नफरत है, इतनी नफरत कि मैं इसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगी, लेकिन तभी राधिका ने गुस्से में आकर सजना के मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया था। वंशिका भी तुरंत आगे आई और उसने भी सजना की जोरदार धुलाई करते हुए कहा, तू हमारी आस्था की जान लेने चली थी, तुझमें हिम्मत है तो एक बार फिर उसे हाथ लगाकर दिखा। ये कहते हुए सभी लड़कियां लगातार सजना को पीटने लगी। कई बार मार खाने के बाद भी सजना शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं आस्था ने अफसोस भरे अंदाज में नानीमा की ओर देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सजना के सामने जाकर खड़ी हो गई। रौनक और वंशिका ने उसे पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया था। आस्था ने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, तुम जानती हो सजना, बड़ी अफसोस की बात है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी तुमसे किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन किया ही नहीं। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ खुद को तुलना में नहीं रखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हें मुझसे इतनी नफरत कब और क्यों होने लगी। तुम अपनी नफरत में इतनी डूब गई कि तुम्हें सही और गलत का फर्क भी समझ नहीं आया। तुमने अपनी इसी नफरत में अपनी इज्जत तक गवा दी। सच कहूँ तो तुम्हारी जितनी बेबस और लाचार इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और सच बताऊं, मुझे तुमसे अब भी कोई नफरत महसूस नहीं हो रही, सिर्फ तुम पर तरस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तरस। क्या संजना बदल जाएगी, अपनी नफरत में आस्था को चोट पहुँचाएगी? आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, सुनते रहिए पॉकेट FM पर तेरे इश्क में।